मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। एफईआईएस के आज 18 फरवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, और स्वागत करता हूं किरण का जो गांव पटेड़ा से हैं, जिला है इनका सिवान बिहार से, जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च की क्लासेस के लिए दाखिला लिया है। दोस्तों मैं आज एक छोटी सी बात खासकर उन स्टूडेंट से कहना चाह रहा हूं जो सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि आपको मेरी बात थोड़ी सी उटपटांग सी लगेगी, लेकिन मेरे पास चूंकि इस समस्या से संबंधित ढेर सारे मेल आने लगे हैं तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसके बारे में अपने प्रिय श्रोताओं को कुछ बातें सतर्कता के तौर पर बता देनी चाहिए। मेरे पास जो मेल आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं डेली कई कई मेल आ रहे हैं कि सर हमने सिविल सर्विस प्री का फॉर्म भरा है लेकिन उसमें यह गलती कर दी, लेकिन उसमें यह गलती कर दी, लेकिन उसमें यह गलती कर दी। दोस्तों मैं उसके सीधे जवाब आपको नहीं दे रहा हूं और कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि इसे आप इस रूप में लीजिए, फॉर्म भरने में गलती आप कर क्यों रहे हैं? क्या जल्दबाजी है? क्या आप इत्मीनान से फॉर्म को पढ़ नहीं सकते? अगर मान लीजिए कि उसमें से किसी कॉलम के बारे में आपको कोई संदेह हो रहा है तो किसी दूसरे से बात कर लीजिए, क्योंकि वहां कौन बनेगा करोड़पति में एंट्री पाने के लिए तो कुछ ऐसा है नहीं कि कौन सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसके आधार पर आपको चाहिए कि आप अपनी मानसिकता का मूल्यांकन करें कि आप इतनी हड़बड़ी में हैं कि फॉर्म तक आप सही नहीं भर पा रहे हैं। इस पर दोस्तों आप सबको विचार करना चाहिए। तो मेरा जो यहां निर्देश है, अनुरोध है, आप कह लीजिए वो ये कि इत्मीनान के साथ फॉर्म भरिए, उसमें कोई जल्दबाजी मत दिखाइए। बहुत दिन है अभी फॉर्म भरने के, भेजने के। जिन कॉलम के बारे में आपको संदेह है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए किसी से, बहुत से लोग मिलेंगे, और फिर भरिए। दूसरी बात, मेरे पास इससे संबंधित भी मेल आए हुए हैं। मेल इस तरह के आते हैं कि सर उसमें 1 अगस्त की डेट दी हुई है लेकिन मेरा 17 अगस्त को पूरा हो रहा है तो मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। आपको क्यों संदेह हो रहा है? जब वो 1 अगस्त की डेट है तो 1 अगस्त ही है, बात खत्म हो गई। यहां तक कि अगर आप 2 अगस्त को जन्म लेते हैं तब भी आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये गणित है। 1 अगस्त मतलब 1 अगस्त, खत्म हो गई बात। इन सब तथ्यों के बारे में भी आपके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जो बातें वहां इतनी स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं, खत्म हो गई बात, या तो है या नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां भी मानसिकता का सवाल आता है, क्वालिटी ऑफ ब्रेन का सवाल आता है, क्वालिटी ऑफ थॉट्स का सवाल आता है, कि ऐसी चीजों में भी संदेह किया जा रहा है जहां संदेह की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो कल्पना करके देखिए कि फिर जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, किसी भी विषय को जानने और समझने की कोशिश करेंगे तो वहां तो संदेह की भरमार होगी, और उस संदेह का आधार यही होगा कि जो चीज हमें सूट नहीं कर रही है वहां हमें संदेह हो रहा है। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक मानसिकता होती है। मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी मानसिकता को बहुत अच्छे तरीके से समझ करके उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों इन 2 घटनाओं के बहाने आप यूं कह लीजिए कि मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए किस तरह की मानसिकता की जरूरत होती है, किस तरह के आप अपनी मानसिकता का कैनवास तैयार करेंगे, उस पर मैंने इशारे के तौर पर थोड़ी सी बातें आप सबसे कही हैं। हालांकि ये जानते हुए भी ये बातें कही हैं कि ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं की जाती। अब मैं आता हूं फ्रेंड्स न्यूज पर। आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे महिला सशक्तिकरण पर बात करूंगा, लेकिन जो न्यूज है, कल आपने न्यूज सुनी होगी उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है। एक तो उन्होंने हरित विकास मॉडल शब्द का इस्तेमाल किया। हरित विकास मॉडल, ये हरित विकास मॉडल क्या है? मुझे मालूम है कि इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि जब आजकल के समय में, अभी के समय में यूं कह लीजिए कि जब भी हरित की बात आती है तो सीधे सीधे पर्यावरण से जुड़ जाती है, पर्यावरण से, यानी कि वह काम जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जरूरी है, या यूं कह लीजिए कि वह काम जो पर्यावरण के प्रदूषण को रोकता है। आप टीवी चैनल्स पर भी देखते हैं हरे भरे कुछ काम, है ना। तो हरित को लेकर के अब बहुत सारे शब्द प्रचलन में आ गए हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपको चाहिए कि आप उन शब्दों के अर्थ को समझ लें। एक एक शब्द के अर्थ को समझने में मुश्किल से पांच पांच मिनट ही लगेंगे, उतने भी नहीं लगेंगे, लेकिन एक बार आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो फिर जो आर्टिकल्स वगैरह आप पर्यावरण पर पढ़ते हैं उन्हें समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, आसानी तो चलिए एक अलग बात हुई, आप विषय को समझ भी सकेंगे, जो ज्यादा जरूरी है। हरित विकास की बात कही, यानी कि आप इसे कह सकते हैं धारणीय विकास ही है, जो लंबे समय तक चले, जो प्रकृति के दोहन और शोषण पर आधारित नहीं है, पर्यावरण प्रदूषण पर आधारित नहीं है। हरित विकास, हरित वित्त, हरित ऊर्जा, हरित ऑडिटिंग, हरित बॉन्ड, इस तरह के ढेर सारे शब्द, हरित लेखांकन, बहुत सारे शब्द आ गए हैं। एक बार ध्यान से आपको इनके बारे में जान लेना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा डेटा दिया है और मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है, फिलहाल तो आप लोगों को नोट कर ही लेना चाहिए, यह भी पर्यावरण से संबंधित है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जो टाइगर की संख्या है वो 2970 हो गई है, 2000-3000 में बस 30 कम है, 2970, और हमने अपने इस लक्ष्य को 2 साल पहले ही पा लिया है, जिसे आप भारत की एक बहुत बड़ी सफलता कह सकते हैं। टाइगर के बारे में हम लोगों ने इससे पहले भी बात की थी, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, लेकिन ये जो डेटा है ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये डेटा दिया है, तो आप इसका इस्तेमाल आगे चल करके पर्यावरण से संबंधित, प्राणियों से संबंधित, या राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ आप कर सकते हैं, वो आपके प्रश्न को थोड़ा सा वजनदार बनाने की ताकत रखता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने यह भी सुना, अखबारों में पढ़ा भी होगा कि जो निर्भया कांड के मामले में जो 4 अभियुक्त हैं, अब तो खैर वो अभियुक्त नहीं रह गए हैं, अब तो सीधे सीधे वो अपराधी ठहरा दिए गए हैं, उनके फांसी देने की डेट फिर से डेथ वारंट जारी कर दिया गया है। देखिए, तो एक घटना है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब जो ये घटना है, इस घटना ने एक अलग तरीके से यूं कह लिए न्यायालय पर प्रेशर डालना शुरू किया है। उस तरह का प्रेशर नहीं कि कोई हस्तक्षेप, या कह लीजिए कि प्रशासन पर प्रेशर डालना शुरू किया है। जो हमारे विधायक हैं, विधायक का मतलब है जो कानून बनाते हैं, चाहे वो सांसदी क्यों ना, उन पर प्रेशर डालना शुरू किया है। वो ये है कि कानून व्यवस्था में इस तरह का सुधार होना चाहिए कि सब चीजें टाइम बाउंड हों। अब देख रहे हैं कि निर्भया मामले में कितना लंबा वक्त लगता चला गया और फिर डेथ वारंट जारी किया गया, फिर से कानून में कुछ खामी निकल गई तो फिर से टला। तो हमारे कानून को ठीक किया जाए और सारी चीजें एक टाइम फ्रेम में हों कि भाई ये इतने दिन तक चलेगा, ये इतने दिन तक चलेगा। अदरवाइज प्रतिक्रिया स्वरूप आप देखिए कि जब हैदराबाद में इस तरह की घटना घटी थी तो क्या स्थिति हुई थी। कहा जाता है कि पुलिस मुठभेड़ में वो मार दिए गए, वो भी निर्भया कांड जैसा ही मामला था और पूरी जनता इसका स्वागत कर रही थी। ये तो बहुत ही, मतलब आप कह लीजिए कि कानून और व्यवस्था, जहां शासन हो और लोकतंत्र हो, वहां तो इस तरह की घटनाएं कि पुलिस किसी को मुठभेड़ में मार दे या मारा जाए या जो भी हो, सही गलत की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कानून तो वहां निरस्त हो जाता है, कानून को तो हम सस्पेंड नहीं कर सकते। और ये जनता की प्रतिक्रिया है क्योंकि कानून ऐसा है जो लंबा 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 खींचता चला जा रहा है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, तो जनता में आक्रोश का भाव आ रहा है और ये मुझे लगता है कि एक दबाव है, शायद न्याय व्यवस्था में सुधार का कोई रास्ता निकले। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी कही है, वो है शांतिपूर्ण कानून के दायरे में प्रदर्शन। जो शाहीन बाग में जो लंबा प्रदर्शन हो रहा है, रास्ता बंद हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये आपका ठीक है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है प्रदर्शन करना, लेकिन वो कानून के दायरे में ही होना चाहिए। दूसरों के जीवन में इतना बड़ा हस्तक्षेप आप नहीं कर सकते प्रदर्शन के अधिकार को लेकर के। और वहां उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि मौलिक अधिकारों के प्रति एक संतुलित हमारी अप्रोच होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे मौलिक अधिकार हैं तो हमें चाहिए ही चाहिए, हमें दूसरों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा उसी के साथ साथ करनी होगी। फ्रेंड्स, आज के करंट कंटेंट के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको प्रोवाइड किया गया है, जो हिंदू में छपा था, इंग्लिश में, और हिंदी में आपको दिया गया, भारतीय संविधान का एक तरफा झुकाव। इसका संबंध इसी बात से है कि हमारे जो संविधान है वो संघात्मक ज्यादा है या एकात्मक ज्यादा, यानी कि केंद्र की तरफ झुका हुआ ज्यादा है या राज्यों की तरफ झुका हुआ ज्यादा है, और इसको लेकर के अक्सर मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और देखिए, हो सकता है कि विषय वही हो, टॉपिक वही हो, लेकिन प्रश्न अगर आप उस प्रश्न को लिख रहे हैं और उसके उत्तर में तब्दीली नहीं कर रहे हैं तो फिर वो समसामयिकता उसकी गायब हो जाएगी, और अगर समसामयिकता गायब हो गई तो उसके नंबर भी कम हो जाते हैं। तो ये बहुत ही समसामयिक विषय पर लिखा गया बहुत ही अच्छा लेख है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ें और जो बात आपको ज़रूरी लगे उसे आप नोट भी कर लें। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, वह है महिला सशक्तिकरण पर। मैंने ये विषय क्यों चुना है, दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक डिसीजन दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन के तहत कहा है कि अब जो महिलाएं हैं वो भी कोर कमांडर बन सकेंगी। कोर कमांडर का मतलब है कि एक जो एक आप यूं कह लीजिए कि एक ग्रुप है सेना का, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, उसको कमांड करने वाली यानी कि उसको आदेश देने वाली। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो कहा वो सच पूछे तो काफी कुछ हास्यास्पद सा है। सरकार ने जो अपने पक्ष में तर्क दिए कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, एक तो उन्होंने कहा कि नहीं उनको कमांड का जिम्मेदार नहीं की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती क्योंकि पुरुष उनका आदेश नहीं मानेंगे। मुझे लगता है कि सरकार के द्वारा ये किया जाए कहा जाना सही नहीं था कि पुरुष उनका आदेश नहीं मानेंगे। इस पर बहुत सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि आप कैसे ऐसा कह सकते हैं कि उनका बहिष्कार करेंगे कि संविधान के जो हमारे अनुच्छेद के तो पूरी तरह से खिलाफ है। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि जो महिलाएं हैं वो सामाजिक दायित्वों के या कह लीजिए कि जो सेना के जो खतरे होते हैं उनको झेलने में सक्षम नहीं है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप ये जो महिलाओं के साथ साथ ये सेना का भी आप अपमान कर रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आज अखबारों में काफ़ी कुछ लिखा गया है। दोस्तों वो आप सब देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि ऐसे सीधे प्रश्न तो आते नहीं हैं तो उनके बारे में बताने का कोई मेरा विशेष अर्थ है नहीं, उसकी कोई मेरा फिर अगर मैं उन्हें ही गिनाने लगूंगा तो कोई रोल भी नहीं होगा। अखबारों में आप पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ महिला सशक्तिकरण पर केवल आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ। पहली बात कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है, महिला सशक्त होती कब है, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण इसलिए नहीं हो जाता कि आप उसे नौकरी दे रहे हैं, इसलिए नहीं हो जाता कि वो धन कमाने लगी है। नो, महिला सशक्तिकरण का मतलब है जब उसके हाथ में निर्णय लेने का अधिकार आता है। अब आप देखिए कि बहुत सी महिलाएं ऐसी गांव में तो आप चले जाइए वो कमाई कर रही हैं, बकायदे खेती में पूरे अपने पति के साथ मिलकर के बराबर काम कर रही हैं, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, वो अपनी कमाई को भी अपने हिसाब से खर्च नहीं कर सकती, तो ऐसी महिला सशक्त नहीं है। इसीलिए मान करके चले कि बहुत से अपर सोसाइटी में यानी कि कह लीजिए आर्थिक रूप से बहुत संपन्न लोग हैं लेकिन वहां भी महिला सशक्तिकरण नहीं है, बहुत से निर्णय पुरुष के ही हाथ में है। तो सशक्तिकरण का मतलब है निर्णय लेने का अधिकार। अब जो ये टॉपिक है जिस पर मैंने अभी बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि कोर कमांडर बनाई जा सकेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत जबरदस्त निर्णय है और ये इतना बड़ा निर्णय है कि ये महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मुझे लगता है कि एक माइलस्टोन होगा, माइलस्टोन होगा। दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, समय की कमी के कारण मैं वो टिप्पणियां आपको बताने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मैं आपको मतलब आप यूं कह लीजिए कि गाइडेंस दे रहा हूं कि जो टिप्पणियां की हैं उन टिप्पणियों को आपको नोट कर लेना चाहिए और उनका इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, क्योंकि जो महिला सशक्तिकरण है आपके सिविल सर्विस का जो सिलेबस है उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप पिछले 5-7 साल के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, मेन्स के महिला सशक्तिकरण पर प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस तरह से नहीं पूछे जाएंगे कि कौन से कानून बने, दहेज को रोकने के लिए क्या किया गया, पिता की संपत्ति में अधिकार के लिए कौन सा कानून पारित किया गया, वो युग अब खत्म हो चुका सिविल सर्विस के प्रिपरेशन का, अब तो बहुत ही करेंट चीजों को लेकर के चला जाता है। और ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, आप कह लीजिए कि पाथ ब्रेकिंग डिसीजन है। तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आप विस्तार से बल्कि कटिंग्स काट करके रख लें और उनका कैसे आपको उपयोग करना है इसके बारे में भी तरह तरह से विचार करें। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं मुकेश कुमार, मुकुल घोष, विजेंद्र कुमार, नितिन कुमार अमरोहा उत्तर प्रदेश से, अखिलेश्वर राज बिहार से और पारुल, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।